ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी ने मेहरौली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बदला। महेंद्र चौधरी नए उम्मीदवार बनाए गए। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से पूरे वर्ष के लिए पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वर्ष 2026 से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सराय काले खां के बांसेरा में बच्चों के लिए खेल परिसर और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आम आदमी पार्टी ने मेहरौली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बदल दिया है। पहले विधायक नरेश कुमार यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन अब महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। नरेश यादव को पिछले दिनों एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में सजा सुनाई गई थी। टिकट मिलने की घोषणा के बाद महेंद्र चौधरी ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद दिया।
मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और अरविंद केजरीवाल जी को दिल से आभार। जो हमारी संजीवनी योजना है, जो अरविंद केजरीवाल जी इतनी शानदार योजना लेके आए हैं, उसको नीचे तक जमीन तक उतारने का पहुंचाने का काम मैं करूंगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना की घोषणा को केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने चुनावी प्रचार बताया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि संजीवनी योजना दिल्ली सरकार का केवल एक चुनावी वादा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पहले से ही मौजूद है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना पर हस्ताक्षर कर दें तो कल से ही इसे राजधानी में लागू किया जा सकता है।
तो दिल्ली की सरकार को चाहिए कि संजीवनी योजना तो उन्होंने जो करना होगा या नहीं करना होगा, जो आयुष्मान भारत योजना अवेलेबल है, अगर आज ही आप दिल्ली की मुख्यमंत्री साइन करें तो कल से लागू हो जाएगी।
वहीं आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमेशा अपने वादों को पूरा किया है।
दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। आज तक जितने ही वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं सब करके दिखाए हैं।
दिल्ली प्रदेश भाजपा की संकल्प पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए 1 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में जनता की आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री बिधूड़ी ने बताया कि 21 और 22 दिसंबर को लोगों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजकर और अधिक सुझाव एकत्र किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 2026 से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि 27 दिसंबर को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में पाठ्यक्रम के मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले ही 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू कर दिया है। इसका तीसरा सेमेस्टर अभी जारी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहले वर्ष के बाद पाठ्यक्रम छोड़ने वालों को प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों को डिप्लोमा, 3 साल पूरे करने पर डिग्री और चौथा वर्ष पूरा करने वाले छात्रों को ऑनर्स डिग्री दी जाएगी। 3 साल के बाद छात्र 2 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 4 वर्ष पूरे करने वाले 1 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। कई स्कूलों में सीटों से कई गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग ने नवंबर में दाखिले की प्रक्रिया की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी स्कूल 3 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 10 जनवरी को किस बच्चे को किस मानक में कितने अंक मिले इसकी सूची जारी की जाएगी। विभाग दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची 17 जनवरी को जारी करेगा। विभाग के अनुसार इस सूची पर किसी भी तरह का संदेह होने पर अभिभावक 18 से 27 जनवरी तक स्कूल से बातचीत कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट 2 फरवरी और सीटें खाली रहने पर तीसरी लिस्ट 26 फरवरी को जारी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष 1 जनवरी से पूरे वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आदेश के अनुसार पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच कल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने शहर में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी के बारे में जानकारी दी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सराय कालेखां के बांसेरा में बच्चों के लिए खेल परिसर और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। 2 हेक्टेयर में फैले इस परिसर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
बच्चों के खेलने वाले क्षेत्र के डिजाइन में मनोरंजन और शारीरिक विकास दोनों पर जोर दिया गया है। इसमें बच्चों को सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण में घूमने, खेलने और सीखने का एक समग्र अनुभव मिलेगा। इस क्षेत्र में बच्चे प्ले माउंट और दीवार पर चढ़ाई जैसी शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल श्री सक्सेना ने कहा कि बड़े शहरों में बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में खेलने के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने राजधानी में नवीकरणीय ऊर्जा के ढांचों को मजबूत करने के लिए बासेरा पार्क में 2 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, नई दिल्ली।
दिल्ली नगर निगम ने आज खजूरी डिस्पेंसरी में 100 दिवसीय तपेदिक उन्मूलन अभियान के अंतर्गत तपेदिक उन्मूलन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में पोर्टेबल एक्सरे मशीन से रोगियों की जांच की गई। निगम ने अब तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 66 शिविरों का आयोजन किया है। निगम इस अभियान के माध्यम से तपेदिक के लक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव आराधना पटनायक ने खजूरी डिस्पेंसरी और करावल नगर स्थित क्लिनिक का दौरा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नोएडा के बीच DND फ्लाईवे की यात्रियों पर टोल लगाने की नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की याचिका आज खारिज कर दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया कि DND फ्लाईवे के लिए NTBCL को दिया गया अनुबंध अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना था। न्यायालय ने कहा कि टोल शुल्क लगाने के लिए NTBCL को अधिकार सौंपना अवैध था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश के न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। न्यायालय ने कहा कि DND फ्लाईवे समझौता देने की प्रक्रिया के दौरान कोई प्रतिस्पर्धी बोली नहीं लगाई गई थी, इसलिए NTBCL को टोल लगाने का अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें सुबह 11:30 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया था और करीब 12 बजे उनका निधन हो गया।
ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला पहली बार 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने श्री चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये प्राथमिकी संसद भवन परिसर में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में 2 भाजपा सांसदों को चोट लगने के बाद दायर की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने प्राथमिकी से केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटा दी है, शेष सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में लगाई गई हैं। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद बांसुरी स्वराज और हिमांग जोशी के साथ कल संसद भवन थाने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन पर संसद भवन परिसर में भाजपा सांसदों को धक्का देकर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 लगाई गई हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य कुडाजी मोहम्मद शरीफ को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार मोहम्मद शरीफ भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवीण नेतारू की हत्या में आरोपी है। कॉरपोरेट कार राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 54 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पहले बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच नहीं थी, वे अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि 55% जन धन बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जबकि योजना के 66% लाभार्थी समाज के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र से हैं। श्री मल्होत्रा ने आगे कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज सरकार और लाभार्थियों के बीच कोई बिचौलिया नहीं है और नागरिकों को सरकार से सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 36 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लगभग 8 करोड़ 39 लाख नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक क्रांति बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 21 करोड़ 55 लाख रुपए के यूपीआई लेन देन किए गए। श्री जाधव ने आज नई दिल्ली में जनधन, आधार और मोबाइल जेम के बारे में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के अंतर्गत एक क्रांतिकारी पहल यूपीआई को फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और भूटान सहित विभिन्न देशों में अपनाया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जेम, ट्रिनिटी, जनधन योजना, आधार और मोबाइल के एकीकरण से वंचितों को सशक्त बनाने में एक सफल कदम है। श्री जाधव ने कहा कि 54 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 2.4 करोड़ रुपए जमा हैं। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज कहा कि युवा केंद्रित नीतियों में भारत की पहल मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता दिखाती है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना लाभकारी सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार नारी शक्ति अधिनियम और सुकन्या समृद्धि जैसी पहलों के जरिए लैंगिक समानता के लिए काम कर रही है। सुश्री खड़से ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी पहलों ने लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने संसद में हुई उस घटना पर चिंता व्यक्त की है जिसमें एक महिला सांसद को असुरक्षा का सामना करना पड़ा। आयोग ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित हर जगह महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि ऐसी घटनाएं उत्पीड़न को सामान्य और स्वीकार्य बनाकर चिंताजनक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आयोग ने अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी जनवरी में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के लिए MyGOV पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों और माता पिताओं के लिए विविध विकल्प प्रश्न में क्विज प्रतियोगिता तैयार की गई है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा कर सकते हैं। दिल्ली में आज ठंड महसूस की जा रही है, हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से शीतलहर चलने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बदला, महेंद्र चौधरी नए उम्मीदवार बनाए गए। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से पूरे वर्ष के लिए पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वर्ष 2026 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सराय कालेखां के बांसीरा में बच्चों के लिए खेल परिसर और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।